تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم سب میری اطاعت کرو اور مجھے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دو، اور اگر عہد شکنی کی اور اپنے عہد پر قائم نہ رہے تو خدا کی قسم تمہارا یہ عمل میرے لیے نیا نہیں ہے، کیونکہ میرے باپ بھائی اور چچازاد بھائی مسلم کے ساتھ بھی تم نے وہی کیا۔ تو پھر تمہارے وعدے پر بھروسہ کرنے والا نقصان میں رہے گا، تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اسلام حاصل کرنے میں تم نے غلط راہ پر قدم رکھے اور اپنے حصے کو بلا وجہ کھو دیا ہے۔ جو شخص اپنا عہد توڑے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے تم سے بے نیاز رکھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام۔
جب میں گھوڑے پر سوار تھا اسی وقت میں تمہیں پہچان گیا تھا، لیکن ہاشم کو پہچاننے میں وقت لگا۔ اس کا نام شبدیز ہے، میں نے خود اسے پالا ہے۔ نئے ماڈل کی بینز کی قیمت ہے اس کی۔ ابوظہبی کا شہزادہ کافی دنوں سے میرے پیچھے پڑا، لیکن اسے نہیں دوں گا۔ یہ بہت اچھا جانور ہے۔ تمہیں گھوڑے کی پہچان ہے؟ تم جانتے ہو گھوڑا یعنی کیا؟
گدھوں کے بارے میں پہلے مجھے کچھ علم تھا، لیکن اب وہ بھی بھول گیا۔
اب مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ٹھیک سے سلام دعا تو کر لینا دو، بعد میں چلیں گے۔
جلد باز ہو اچھی، بالکل جوانی کی طرح جلد باز ہو۔ میرے بھائی 20 سال بعد جب میرے پاس آئے تو ضرور کوئی کام ہوگا، استبل میں کوئی بات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ چلو ادھر بیٹھتے ہیں، آفاق نے چائے پانی کا انتظام کیا ہے، چائے پی کر کے دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے۔ آئیے، بسم اللہ۔
بسم اللہ۔
بسم اللہ۔
حاجی کچھ بولنے والے تھے، دیکھا کچھ نہیں یاد آ رہا ہے۔ اب پبلک بھی ان کے ڈائلاگ کا انتظار کر رہی تھی اور یاد دلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں یاد آیا، نہ سب بھول چکے تھے۔ بہرحال جب کچھ یاد نہیں آ رہا तो माइक्रोफोन सैयद जवाद के हवाले कर दिया। प्रोग्राम बिल्कुल खराब हो रहा था, बहरहाल सैयद जवाद के हवाले कर दिया। अब सैयद जवाद कौन है? वो है जो दिन दहाड़े अपनी बातें भूल जाते हैं। नौहे की बात छोड़िए, सुन रही हो ना? सैयद जवाद के हाथ तो माइक्रोफोन आ चुका था, कहने लगे पीले कलर की गाड़ी किसकी है, ये पीले कलर की गाड़ी किसकी है, इसको रास्ते से आके हटाइए। हाजी खुद सबसे पहले हंसने लगे। बाद में याद आया वो गाड़ी उन्हीं की थी। हाजी को माइक्रोफोन पकड़ाया और जाके गाड़ी को पार्क किया।
तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद है।
मैं तुम बूढ़ों की तरह भूलने की बीमारी का शिकार नहीं हूँ। अपने बदन को अच्छी तरह संभाला और हर चीज का ध्यान भी रखा है, और रखना भी चाहिए। लेकिन अगर बेतवज्जो की होती तो मेरा भी हाल वही पीले कलर की गाड़ी की तरह होता, देख लो।
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कभी भी किसी कमेटी और अंजुमन के मेंबर रहे होंगे।
उस वक्त तो जवानी का आलम था, बाद में होश में आ गया।
बहरहाल सबको किसी ना किसी वक्त होश आ ही जाता है, किसी को जल्दी और किसी को देर से।
आप जो मलिसों की जीनत हैं और मेंबर के पास बैठकर मसायब में आंसू बहाते हैं और अच्छे खाने बनाने वालों से ताल्लुकात बनाए हैं और पैसे वाले हैं और शान से शहर में चलते फिरते हैं, तो पहले होशियार हो गए और अकल आ गई, और हम जैसे लोग जो चटियल मैदान में रहकर मेहनत कर रहे हैं देर से होशियार हुए हैं।
तुम्हारी पहली वाली बीवी जिनकी कब्र पर नूर की बारिश हो,
रहमत करे
खुदा आफाक साहिबा को अलबत्ता अच्छा रखे। अपनी जवानी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया तुमने?
हाजी साहब, खुदा आपकी बीवी को अच्छा रखे। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया अब तक।
अगर आप ना आए होते तो जुमले भी उनसे ना कहता।
इतने बुरे हालात थे?
नहीं, इतने भी बुरे नहीं थे, बल्कि अच्छे ही थे। लेकिन बात यह है कि इंसान बदलते रहते हैं, उसका जहन खुलता है, चार किताबें पढ़ता है, तारीख का मुताला करता है, लोगों की बातें सुनने की कोशिश करता है।
लग रहा है आजकल टीवी सीरियल कुछ ज्यादा ही देखा।
इसका ताल्लुक टीवी सीरियल से नहीं है।
क्यों नहीं? रोज ही टीवी के सामने बैठ कर उल्टे सीधे प्रोग्राम देखते रहते हैं।
हाजी मुर्तजा, अगर मुझे नसीहत करने के लिए इस वक्त आए हैं तो पहले बता दूं गलत वक्त पर आए हैं। अब वो पहले जैसे हालात नहीं हैं। अब इस काफिर के दिल में नूर और रोशनी की कोई जगह नहीं है। बिलावजे की मेहनत मत करो हाजी, और मुझ बदबख्त पर भरोसा ना कीजिए।
मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। करबला जाते वक्त एक नौजवान का साथ हुआ जो सिर्फ इसी तरह की बातें करता था, तारीख की बातें और अक्ल मंतिक की बातें बहुत ज्यादा करता था। करबला पहुंचकर बैनुल हरमैन मैंने खुद देखा कि वो ऐसी माँ की तरह रो रहा था जिसका जवान बेटा मर गया हो। मैंने पूछा तो फिर वो बातें क्या थीं? कहने लगा वो सब अपनी जगह पर, अब यहाँ दिल की बात है। इस तरह की बातें जो भी सुने लेकिन दिल नहीं सुनता है।
मतलब तुम मेरे दिल के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो हाजी?
नहीं भाई, मुझे किस चीज की खबर है कि जो तुम्हारे दिल की खबर हो?
तो फिर
मैं 20 साल बाद यहां तुमसे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूं, और तुम्हारी बातों से मुझे क्या लेना देना? मुझे इसकी फिक्र है कि तुम हमारे दोस्त हो, एक मोहल्ले में रहते थे, एक अंबरगा में पले बड़े थे हम।
आप कैसा माम बारगा और कैसी शबी खानी?
तुम जैसों के लिए जो कहीं पहुंच चुका है क्या फर्क पड़ता है कि इमाम बारगाह है कि नहीं, तुम्हारे लिए तो बेहतर है।
यही जो 20 साल के बाद भी शबी खानी के लिए मुझसे नाराज हो, तो मतलब ये है कि मैं ठीक जगह आया हूँ और हबीब के दरवाजे पर सही दस्तक दी है।
हाजी, कोई आसानी से भी हबीब के दर पर नहीं पहुंच सकता। बहुत पूछताछ करके ही यहाँ तक आ पहुंचे होगे। कोई जरूरी काम है तो बोलो।
वही काम है जो अभी तुम्हें बताया है, शबी खानी का प्रोग्राम है।
अच्छा, आखिर तुम आज ये कैसी बातें कर रहे हो हाजी? 20 साल पहले की बात है, अब याद आया है तुम्हें? नमाज नहीं है जो आपकी गर्दन पे उसकी कजा बाकी है, शबी खानी है।
20 साल पहले जो कुछ भी खोया है, कोई गलत नहीं हुआ है कि जिसका बदला लेना चाहते हो, और किसी से कोई चोरी भी नहीं की कि उसके हिसाब किताब का खौफ हो। अदा और कजा की बात भी नहीं है, परेशान हूं। हाशिम सब कुछ जानता है, मुसीबत में हूं। मैंने नजर की है, अहद किया है कि इस साल शबीखानी फिर से शुरू करेंगे।
नामुमकिन है अची, नामुमकिन है। जब हमारे हालात ठीक थे तब हबीब याद नहीं आए, और जब मुसीबत आई तो हबीब याद आ गए। 20 साल बाद मुसीबत में पढ़ने के बाद अब मेरी याद आई हाजी।
हाँ तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई हबीब, सिर्फ हम ही लोगों से गलती हुई है ना। और माशाल्लाह तुमने तो हमें बड़ा याद रखा है।
हाशिम साहब, नदी के उस पार आप खड़े हैं, इस पार हम खड़े हैं।
हम दोनों नदी के अंदर हैं मेरे दोस्त।
नदी के अंदर तो शबीखानी की जरूरत नहीं पड़ेगी हाजी।
नदी को जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है, दोस्ती की खातिर, बचपन में खाए हुए नमक और रोटी की खातिर। मुझे तुमसे याली सुनना है बस, एक दोस्त की जरूरत है जिस पर भरोसा कर सकूं। मुझे 20 साल पहले के हबीब की जरूरत है।
हबीब का 20 साल पहले फातिहा पढ़ा जा चुका है, खत्म हो गया हबीब। तुमसे तो कोई मजाक नहीं है, अगर मेरे बस में कुछ होता तो जरूर करता। पैसे, कपड़े, घोड़े की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं, लेकिन अगर ये चाहते हैं मैं खुद वहां आऊं और शबीखानी करूं तो मुझे माफ करें।
हबीब साहब, कपड़े, पैसे, घोड़े फिल्म के लिए थिएटर में इस्तेमाल होते हैं, नुमाइश के। शबीखानी में इंसान की जरूरत है और इमाम हुसैन पर रोने वाले की।
हाजी मुर्ज़ा अपनी ही लगाए बैठे हैं, अपने आगे किसी की नहीं सुनते, लेकिन तुम क्यों जबरदस्ती जिद किए बैठे हो? समझा करो भाई मेरे हाशिम। किसने कहा है कि अगर कोई शख्स तुम जैसा ना हो तो उसे शिम्र, यजीद और खुली जैसा बनना चाहिए और आपको मासूम? बस आप लोग की तमाम जिम्मेदारी यही कि चार लोगों को ढूंढे, नजरों नियाज करें और इमाम बारगाह के चिराग जलाते रहें। ये बात इसलिए मैंने की हाशिम के अपने आप को ज्यादा मासूम मत समझो।
तुम भी हबीब ज्यादा ही उड़ने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि चार घोड़े और पैसे और कपड़े देकर तुम बहुत अहम हो गए हो और तुम्हारी बात कोई नहीं टाल सकता और तुम हक बचाने भो। खुदा और दे, लेकिन माल और जायदाद एक रात की है और सेहत एक दिन की मेहमान, मुझे कोई जलन नहीं है। खुदा सब कुछ तुम्हें दे, लेकिन इंसान को इतना घमंड नहीं होना चाहिए। शबीखानी होनी है, आ गए तो सर आंखों पर बिस्मिल्लाह, नहीं आए तो तुम्हारा खाली घोड़ा हमारे किसी काम का नहीं।
माफ करना, हम तो चले, कहीं अकेले में बैठकर सोचना, हो सकता है कि खुदा तुम्हें सही रास्ता दिखा दे।
आप मत डरिए हाजी, आपका काम हो जाएगा। इस मुल्क में हुर की कमी नहीं है, चार शेर तो याद करके कोई भी पढ़ सकता है, रोने वाले भी खुद ही रोएंगे। ऐसे बेचारे बहुत मिलेंगे जिनके साथ हजारों मुश्किलें लगी हुई हैं, मसाए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
खुदा हाफिज। हमारा भी कसूर है, जब तक साथ में थे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, हर मुश्किल में साथ दिया, लेकिन यूं ही और बिला वजह एक दूसरे से अलग हो गए। कोई मगरिब की तरफ चला गया तो कोई मशरक की तरफ, कोई ऊंचाइयों की तरफ गया और कोई खुश नसीब हुआ और कोई जमीन गिर होकर मुसीबत में पड़ गया। गलत कह रहा हूं हाशिम? हाशिम, 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 हाशिम कुछ तो बोलो, हाशिम, 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 हाशिम।
हाशिम दरबंदी साहब कहाँ हैं?
बेड नंबर 16।
शिकारी साहब, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। शिकारी
साहब, सलाम अलैकुम।
ऑपरेशन थिएटर,
तबीयत ज्यादा खराब है?
जो भी हो खुद इन्हीं का कसूर है, पता नहीं कहाँ गए, क्या किया कि ये हालत हुई।
अरे मैं ठीक हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे।
मैंने उस दिन ताकीद नहीं की थी कि जहाँ भी जाना अपनी दवा लेकर जाना।
अरे मुझे चलता फिरता मेडिकल स्टोर मत बनाओ भाई।
तुम्हें हमें परेशान करने में मजा आता है क्या?
डॉक्टर साहब बेहतर नहीं है इनको घर पे रखा जाए?
वो किस लिए, इनकी शादी करवा दो, घर में रहेंगे। लेकिन घर में पड़े रहेंगे तो और तबीयत खराब होगी, वैसे ही सबके साथ कुछ न कुछ लगा रहता है। मैं खुद डॉक्टर होके रोज 10 गोलियां लेता हूँ।
ये मेरे बाबा से भी कह दीजिए जिन्होंने नफरत है दवाओं से।
जनाब इजराइल के परों से मस हो जाएं तो ठीक हो जाएंगे। चलो ये ड्रिप भी खत्म हो गई, अब इन्हें घर ले जाओ ताकि हॉस्पिटल का बेड फालतू में इंगेज न रहे। जितनी भी दवा इनको खानी हो सब एक बैग में रख के इनके कंधे पे टांग दिया करो, ताकि अगर ये बाथरूम भी जाएं तो साथ ले जाएं। ये मत सोचना कि मैं पागल हूँ, दवा हर जगह तुम्हारे साथ होनी चाहिए।
ड्रिप खत्म होने के बाद मैं तुमको लेने आऊंगा, अभी अमीरे बास को देख कर आता हूं।
हाजी साहब आप जहमत ना कीजिए, मैं गाड़ी ले आया हूँ, खुद ही ले जाऊंगा।
अरे अभी बहुत काम है,
कल के लिए रहने दीजिए बाबा।
जल्दी आना।
बस गया और आया।
शेर ने कहा मैं जंगल का बादशाह हूँ, मुझ पर भरोसा करना चाहिए, सबको मेरी इताअत करनी चाहिए, मैं जो भी कहूँ सबको सिर्फ जी कहना चाहिए, अगर मैंने कहा सो जाओ तो सबको सो जाना चाहिए, अगर कहा उठो तो सबको उठ जाना चाहिए, और दो लोगों को रोज मेरे घर की सफाई करनी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए खाना बनाएं, उनके कपड़े धोएं, मार्केट जाकर शॉपिंग भी करना पड़ेगी। एक बच्चा बीमार पड़ा तो पूछने लगा कि कौन यहाँ पर डॉक्टर है।
दादा की जान कैसा है, तुम कैसी हो बेटी?
दादा जान।
दादा जान कुर्बान जाए बेटा।
दादा जान हम किसी फॉरेन मुल्क जाने वाले हैं, अम्मी कहती हैं कि हमको जाना पड़ेगा, वहाँ के डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर देंगे ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और खेल सकूं।
जरूर ठीक होगे बेटा, वहाँ जाने के बाद डॉक्टर से कहना मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं हाजी मुर्तजा का पोता हूँ, ठीक से मेरा इलाज करना तुम, ये फालतू वाला ऑपरेशन मत करना तुम, समझे? नहीं ऐसा ऑपरेशन करना कि मेरी ताकत भी बढ़ जाए और लोग ये कहें कि अरे अमीर अब्बास इतनी ताकत कहाँ से लाए।
वो लोग भी आपको जानते हैं क्या?
हाँ मेरी जान, तुम्हारे दादा को सब जानते हैं, ईरान में भी और ईरान के बाहर भी।
तुम ठीक हो बेटी?
जी शुक्रिया बाबा जान, आपकी दुआ है मैं भी ठीक हूँ, हुसैन भी ठीक है और अमीर अब्बास भी ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं।
खुदा का शुक्र। तुम फिर और जल्दी ठीक हो ना, कि बहुत काम है।
दुकान ले जाएंगे ना हमको दादा जान?
क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे बगैर कोई काम कैसे हो सकता है हमारा।
गिव मी फाइव।
अच्छा मैं चलता हूँ, अभी आ जाऊंगा। बेटी तुमको अपना और ख्याल रखना चाहिए, आंखें भरी भरी सी हैं जागने और ना खाने की वजह से। जैनब बेटी अपनी भाभी का ख्याल रखना।
आपका हम पर बहुत एहसान है बाबा, इससे ज्यादा किया तो शायद हम हजम ना कर पाए, हमारे लिए परेशान ना हो। माशाल्लाह से आपकी उम्र भी इतनी हो चुकी है कि आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, हम तो बस किसी कोने में अपना ठिकाना ढूंढ ही लेते हैं।
बाबा शायद हाशिम चाचा की ड्रिप खत्म हो गई होगी।
मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज पहलवान।
लेकिन जल्दी आ जाइएगा दादा जान।
ठीक है, खुदा हाफिज।
आप किसी का घर ढूंढ रहे हैं क्या?
ये मुर्तुजा वो मुर्तुजा नहीं जिसे तुम जानते थे, बिल्कुल बदल चुका है। वो पहले की कुव्वत भी नहीं है। हाजी हुसैन अली का नालायक बेटा भी इसके बस के बाहर हो गया है। वो उन्हें जेल में डालना चाहता था। तुम्हें यकीन होगा एक मामूली इंसान हाजी मुर्तुजा जैसे को जेल में भिजवाना चाहे? दुकान तो हाथ से निकल गई, इमाम बारगा भी दूसरे के हाथ चला गया, पोता भी तुम्हारी तरह हो गया है। बच्चे की माँ तो हक बजानिब है कि मुर्तुजा से नाराज रहे। एक अपाहिज बच्चे को पालना पोसना कोई आसान नहीं। ऑपरेशन तो छोड़ दो, मैं जानती हूँ इस वक्त मुर्तुजा की क्या हालत है, किन हालात से गुजर रहा है। उसके चेहरे पे मत जाना, अंदर से बर्बाद हो गया है। अंदर से अपने आप से जंग में है और बाहर से सबसे सिवाय आलिया के। लेकिन शबी खानी के लिए इमाम बारगाह की जरूरत है, सड़क पे नामुमकिन है, इमाम बारगाह में होना चाहिए। वो भी हर इमाम बारगाह में नहीं, हाजी हुसैन अली के इमाम बारगाह में। आशूर के दिन इमाम बारगाह जरूर जाएंगे, वहां जाकर किसी जगह पर आराम से बैठकर दिल खोल कर रोएंगे। इतना रोए धोएंगे कि दिल को आराम मिल जाए। अभी जिंदगी से थक गई हूं।
यही है हाजी, यही है।
जितनी आलूदगी यहां पर है तुम अपना मास्क लगा ही लो, चले।
इसका नाम शब्दीज है, मैंने खुद उसे पाला है। नए मॉडल की बिन्स की कीमत है इसकी।
ये फोटो उनको दिखा दो।
सर ये फोटो आपको देने के लिए कहा है।
किसने दिया?
वो उधर बैठे हुए हैं।
अरे भाई घंटी बजाओ, देखो कौन आया है।
अब घंटी से हमारा काम नहीं चलेगा, अब तो हम बूढ़े हो गए मेरे भाई।
बूढ़ा हो तुम्हारा दुश्मन हाजी मुर्तजा। खुशामदीद।
ये हाशिम है।
वाह क्या बात है, बहुत खुशी हुई। ये क्या लगा रखा है, ऑपरेशन थिएटर जाना है क्या?
हाँ फिलहाल यही समझ लो मेरे भाई।
फिलहाल तो एक जरूरी काम है।
हाशिम की तो बात ही अलग है। इंशाल्लाह खुदा अच्छा रखे आपको और हाशिम को, हर हाल में अच्छा रखे। लाजवाब इंसान है बेशक।
शायद हम गलत वक्त पर आ गए, तुम कुश्ती देख रहे थे ना?
हाजी मुर्तजा के सामने कुश्ती की क्या औकात है। अगर कोई और प्रोग्राम भी होता तो अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर उसे भी बंद कर देता। ये फोटो जो मैंने एक अरसे के बाद देखी तो समझ गया रहीम को बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है।
रहीम साहब मैं भी देखूं फोटो।
दिल तो कहता है एक बार और अखाड़े में कदम रखूं और कहूं या अली।
लोगों को हंसाने के लिए।
बहुत इसमें हरज क्या है?
तो और क्या, जवानी में सबको रुलाते रहे और आंसू निकालते रहे, अब सबको हंसाने का वक्त आ गया है। मैं तो हाजिर हूँ, बिस्मिल्लाह।
कौल मासूम है कि मोमिन का दिल खुश कर देना इबादत है।
क्या बात कही है।
ये तो खैर मजाक था, जहमत देने की वजह कुछ और थी।
हाशिम साहब के सामने कहता हूँ कि ये गवाह रहे, बल्कि नहीं सबके सामने कहता हूँ, ताकि किसी तरह का शक बाकी ना रहे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, सब लोग मेरी बात सुने, समझे? सब लोग यानी सब लोग। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अपने दोस्त बुजुर्गवार के साथ हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। इन्होंने हमें इज्जत बख्शी है, बहुत ईमानदार और शरीफ शख्स हैं। इनके जैसा तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मोहब्बत में, मुरव्वत में, जवान मर्दी में बेमिसाल हैं। मैंने हजारों लोगों को देखा है, हजारों, सैकड़ों लोगों को तो इसी कहवाखाना में देखता हूं, और सैकड़ों लोगों को अखाड़े में देखा, हर तरह के लोगों को देखा है। बहुत सी जगह गया हूं, बहुत से शहर देखे, मक्का गया, नजफ गया, करबला गया, बहुत से काम अपनी जगह। लेकिन खुदा से ये चाहा है कि खुदा हम सब के गुनाहों को माफ कर दे।
इलाही आमीन।
मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों को देखा है। ये सब जो मैं कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि अपने दोस्तों को देखकर फालतू बकवास शुरू कर दी है और हिजियान बक रहा हूँ। नहीं, इसलिए सबको मुखातब करके कह रहा हूँ ताकि सब गवाह रहें। साफ बात करना चाहता हूँ, इतना होश है कि क्या कह रहा हूँ। इस वक्त से जब तक ये कहते हैं, मतलब ये कि जब तक ये चाहें, मैं इनकी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं इनका हमतन गोश हूँ। यानी अगर बोलें मर जाओ तो मर जाऊंगा, इधर भेजें तो जाऊंगा, उधर भेजें तो जाऊंगा, हर काम के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए भी। जहन्नम भी मंजूर है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि जहन्नम चले जाओ तो जरूर उसमें कोई मसलहत होगी। मैं खास तौर से ये बातें यहां कह रहा हूं कि ये सब हमारे गवाह हैं, ये सब गवाही देंगे। आज से ये बंदे हकीर वक्फ है इस हाजी मुर्तजा के लिए, हर तरह से, जो लाजवाब है, निहायत ईमानदार है।
नरगिस उसके पास है।
मुझे तकल्लुफात नहीं आते, लेकिन मैं वो भी नहीं हूं जो रहीम साहब ने कहा है। बस अगर खुदा कबूल करे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नौकर हूं, और अगर कबूल नहीं किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। एक मसले में बुरी तरह फंस गया हूँ, और इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो जरूर कामयाबी मिलेगी।
इलाही आमीन।
नाम शब्दीज है, मैंने खुद उसे
मैंने नजर की है कि आशूर के दिन शबी खानी करूंगा। रहीम साहब जानते हैं, 20 साल पहले एक अंजुमन के जरिए हमने ये काम किया था, लेकिन जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रह गया। मुझे रहीम साहब से ये गुजारिश करनी है, वो जहन्नम में जाने की नहीं है, खुदा ना करे। इमाम का अजादार और जहन्नम की आग नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारा साथ दें और जनाबे जॉन की शबी खानी करें। करबला में भी जनाबे जॉन का अलग मकाम था, रहीम साहब का भी मकाम हम सब दोस्तों के दरमियान बिल्कुल अलग है। बस यही, अगर तैयार हो तो बिस्मिल्लाह।
ये पुराने साथियों की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलवात।
یہ لیجئے آپ کی روٹی. آپ کے پوتے کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے ہیں. البتہ کہنے کی بات نہیں ہے، کل ہی مولانا شیخ بزرا صاحب آئے تھے سحر کے وقت، ان سے حدیث کے ساتھ پڑھوائی، تنور میں دم کیا انہوں نے اور شروع کی 100 روٹیاں امیر حسین کے نام نظر کر دی تھی.
بہت بہت شکریہ آپ، لیکن اس کا نام امیر عباس ہے.
قربان جاؤں نام اور آداب دونوں پر، خدا انشاءاللہ پنجتن کے صدقے میں جلد از جلد بچے کو شفا دے.
تمہارے منہ میں گھی شکر.
تو امام باڑے کا کیا ہوا جی صاحب؟
کیا بتاؤں، کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے.
لیکن وہ کہتا کیا ہے؟
مشکل تو یہی ہے کہ کچھ سمجھ میں آئے تو صحیح.
تو اب کیا ہوگا؟
وہ کہتا ہے کہ اتنی اچھی زمین امام بارگاہ کے لیے وقف کرنا اچھی بات نہیں.
حاجی صاحب، اسی روٹی کی دکان پر روز دسیوں لوگ آتے ہیں.
بیچو گے کیا؟
نہیں بھائی، یہ روٹی کی دکان ہے. 60 سال سے محلے والوں کی روٹی میں بناتا ہوں، کیوں بیچوں گا میں؟
تو پھر کیوں اس گرم تنور کے سامنے اتنی محنت کرتے ہو اور روز مجھ جیسے دسیوں لوگوں سے باتیں کرتے ہو؟ تاکہ اسی بہانے 4 پیسے کما سکو، بیچ کر بینک میں رکھو اور اس کے مزے لو. اسی کا زمانہ ہے.
ایسے ماحول پر خدا کی لعنت. جب رات گھر جاتا ہوں، البتہ ابھی کی بات نہیں ہے، خوشی ہمیشہ سے تھی کہ سب کی روٹی کی ذمہ داری مجھ پر ہے. حاجی صاحب، میں نے کبھی کسی امیر و غریب کو واپس نہیں لوٹایا، تو کیوں بیچنے لگا؟
پیسے کمانے کے لیے.
ہماری ساری مصیبتیں اسی پیسے اور پیسے والوں سے ہیں.
پیسے والے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، لیکن برا کسی برے کو بھی نصیب نہ ہو.
اگر گہرائی میں جا کر سوچو گے تو اچھے بھی برے ہی ہیں حاجی صاحب.
اچھا چلتا ہوں، خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
ارے میری روٹی کدھر ہے؟ 2 روٹی کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟
ارے چلائے نہیں، دے رہا ہوں.
عالیہ،
السلام علیکم، میں یہاں ہوں.
ابھی تو محرم میں ٹائم ہے، تم نے ابھی سے کالے کپڑے نکال لیے.
کیا کروں، گھر میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے. صبح اٹھنے کے بعد کپڑے دھوتی ہوں، کام کرتی ہوں تاکہ کسی صورت شام ہو جائے. اس گھر میں ہر کوئی محنت کرتا ہے سوائے میرے، جو بالکل اکیلی ہو گئی ہوں. اسی تنہائی کا تو مجھے خوف ہے، کہیں وہمی نہ بن جاؤں.
جب میں مر جاؤں تو تم یہ سمجھنا کہ تنہا ہو گئی. بس یہ مشکلیں کچھ ہی دن کی ہیں، مجھے یقین ہے عاشور کے بعد میری زندگی بدل جائے گی
انشاءاللہ.
عالیہ، بس دعا کرو کہ خدا کے سامنے شرمندگی کا احساس نہ ہو.
زینب کہہ رہی تھی کہ نرگس کا آپ نے بہت خیال رکھا. بہت اچھا کیا حاجی صاحب، آپ کا شکریہ.
میں بھی انسان ہوں، ایک ماں کا جذبات سمجھ سکتا ہوں.
ان دنوں بس اپنے بیٹے علی کو یاد کرتی رہتی ہوں کہ کیسے ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا.
میں نہیں کہنا چاہتا تھا، پہلے ہی دن ہاسپٹل میں آپ سے نظر نہیں ملا سکا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ علی کی یاد آ گئی. پچھلے برسوں کے دوران علی کا غم مجھ جیسے سخت دل انسان کے لیے بھی تازہ ہے. تمہاری بات کیا کہ دل موم جیسا نرم ہے.
میرا علی کیسے اچانک چلا گیا؟
ان دنوں آج کی طرح نہیں تھا، مریضوں کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی. وہ تو بیچارہ صرف 6 مہینے کا تھا. جب تک ڈاکٹر یہ دیکھتے کہ اسے کیا ہوا، بیچارہ چل بسا.
بس یہ سوچتی ہوں کہ اگر علی زندہ ہوتا تو میرے حسین کے لیے بھی سہارا ہوتا، اس پر بھروسہ کرتا.
मैं अब खुद हुसैन का भाई भी हूं। अली की जगह तो भरनी पड़ेगी ना, बाप तो हूं भाई भी बन जाता हूं, मजबूरी है। भाई क्या, दोस्त बन जाता हूं। हॉस्पिटल में यही सोच रहा था कि बच्चा अकेलापन महसूस करता होगा, अपने अंदर गम का समंदर समोए जा रहा है। मुझसे तकल्लुफ करता है, मैं जानता हूं कि मैं ही कसूरवार हूं, लेकिन वो बहुत अकेला है, उसे एक दोस्त की जरूरत है जिसके कंधों पर अपना सर रखकर दर्दे दिल करे और सुकून से रो सके, ताकि मेरी तरह सख्त दिल ना हो वो। ये उसका बड़ापन है कि मुझसे कुछ नहीं कहता।
मैं बस यही सोचती हूँ, अगर मेरा अली जिंदा होता, अगर अमीर अब्बास के साथ ऐसा ना होता,
अगर... इतना अगर मगर कहकर अपनी तबीयत खराब मत करो। तुम तो कह रही थी कि बस पकाती धोती और सफाई करती रहती हो, तो कहाँ गया मेरा खाना?
खाना बनाने का हौसला अब नहीं रह गया, खाली पानी भी हल्क से नहीं उतरता तो खाना क्या उतरेगा।
अच्छा तो क्या पनीर रोटी से ही खाना हो सकता है कि नहीं?
ठीक है, अभी लाती हूँ।
अस्सलामुअलैकुम महमूद साहब, माफ़ कीजिएगा अगर गलत वक्त पर फ़ोन किया, अब तो हम खुद भी पुराने हो चुके हैं। हुकूमत को अब मुझे भी किसी म्यूज़ियम में रख देना चाहिए, ताकि लोग मुझे देखकर सबक हासिल करें।
लेकिन हाजी, इनमें से कोई एक भी इमाम बारगाह के काबिल नहीं है। हालात बदल चुके हैं, लोगों के मिजाज भी।
हर चीज़ नई अच्छी लगती है, सिवाय इस आज़ादारी के। अलबत्ता मैं लोगों की नीयत से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन पहले ज़माने की आज़ादारी और मातम का जो वक़ार था, वो कुछ और ही था। मैं काले कपड़े और ढोल ताशे की वजह से ये बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लोगों के दिल टूटने की बात कर रहा हूँ।
लेकिन ये सब चीज़ें भी कोई कम नहीं हैं। किसी की नीयत के बारे में फैसला करना बहुत मुश्किल है। हम तो अपने को शिया और अहले बैत के चाहने वाले कहते हैं, समझ रहे हैं ना हाजी साहब, खाली मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन आज़ादारा ने इमाम हुसैन के खलूस की वजह से एक मामूली मिट्टी इमाम बारगाह बन जाती है।
क्या कहूँ, हाजी हुसैन के बच्चों को नाखलफ कहने की हिम्मत नहीं, अब बेचारे मरहूम की कब्र पर जाने की हिम्मत नहीं होती, जाकर क्या कहूँ। ठीक कहा महमूद, कोई काफिर और बुतपरस्त भी अपने मंदिर के साथ ऐसा नहीं करता। तुमने कभी सुना कि किसी हिंदू महाराजा ने मंदिर तोड़कर शॉपिंग प्लाजा बनाया हो और हजारों शोबाजियां की हों वहां पर उसने? क्या मैं गलत कह रहा हूँ?
हाजी साहब
आ जाओ, कोई गैर नहीं है। महमूद साहब ने जहमत की और मुझसे मिलने के लिए चले आए।
अस्सलामुअलैकुम।
अस्सलाम,
आप ठीक हैं?
माफ कीजिएगा, जहमत हो गई आपको।
जहमत कैसी, आप अंदर तशरीफ क्यों नहीं लाए?
जहमत नहीं देना चाह रहा हूँ।
खुश आमदीद, लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
घर पर सब ठीक है?
दुआ है आपकी।
बच्चे कैसे हैं?
वो भी ठीक।
बच्चों को दुआ कहिएगा।
जरूर जरूर इंशाल्लाह।
भाभी को भी सलाम कहिएगा।
जरूर।
तशरीफ रखिए, बैठिए।
खुदा आपको अच्छा रखे।
सुबह का नाश्ता बदन में लोहे का काम करता है, खास तौर से अगर मेरी बीवी ने बनाया हो तो। यहाँ तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, अलबत्ता जानता हूँ कि दुकान पर नाश्ता तो होगा ही, लेकिन एक गरीब के साथ खाने का लुत्फ कुछ और ही है। बिस्मिल्लाह।
अलबत्ता इतना आसान भी नहीं है कि इस लड़के के मन में जो भी आए करता रहे वो।
कानून और कोर्ट की नजर से अगर देखें तो वही कामयाब है। چونکہ انہیں رجسٹر کاغذات چاہیے جو ہمارے پاس نہیں. اگر اس بے مروت نے میرے بچے کو نہ مارا ہوتا تو حالات یہ نہ ہوتے. پیسہ کسی کتے کے سامنے ہڈی کا کام کرتا ہے, اس کا بھونکنا بند ہو جاتا ہے. لیکن اس بے غیرت نے اپنے مرحوم باپ کی خاطر ایک دن بھی میرا انتظار نہیں کیا. وہ بے مروت مروتی بھی موقع کا فائدہ اٹھانے سے نہیں چکا.
وہ ڈرائیور جس نے امیر عباس کو مارا تھا نہیں ملا؟
نہیں, وہ بے حیا مار کر بھاگ گیا.
کیسے ممکن ہے کہ دن دہاڑے کسی معصوم بچے کو مار کر انسان بھاگ سکے؟ کیسے اسے آخر نیند آتی ہوگی؟ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوگا؟ کیسے اپنا منحوس چہرہ آئینے میں دیکھتا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ حالات بہت برے ہو چکے ہیں, لیکن اتنے بھی نہیں.
حاجی, اس سے کہیں زیادہ برے حالات ہیں. کس نے سوچا تھا کہ حاجی حسین علی کا بیٹا وقف کے بارے میں ایسا کر سکتا ہے؟
حاجی, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا.
کیا کریں گے حاجی؟
میرا بیٹا حکومت کے ثقافتی شعبے میں ہے. کہہ رہا تھا اگر آپ چاہیں تو اس امام بارگاہ کو تاریخی حیثیت دی جا سکتی ہے. خدا کی قسم, اگر یہ امام بارگاہ دنیا کے کسی اور کونے میں ہوتا, لوگ اپنی آنکھوں کا اسے سرما بناتے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ بھی ایسے معاملات میں استاد ہیں نا.
آپ ہی کے شاگرد ہیں.
بسم اللہ.
میں آپ کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. میں بھی اگر آپ کی جگہ پر ہوتا تو معمولی مسائل پر بھی توجہ دیتا. آپ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں. میڈیکل کمیٹی نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. البتہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایران, اسپین یا جرمنی والے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے.
مطلب ممکن ہے وہ کبھی ٹھیک نہ ہو؟
دیکھیں, میں ڈاکٹروں کی زبان استعمال کر کے آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, لیکن جو آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا ایسا کم پیش آتا ہے.
ڈاکٹر صاحب, میں جانتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم کوئی ڈینگی بیماری نہیں ہے جو کسی کو بھی سرایت کر جائے. میں جانتا ہوں,
لیکن اس طرح کے کیس میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. یہ ایک اسپیشل کیس ہے.
ریڑھ کی ہڈی بھی اگر خراب ہوئی ہے تو یا تو ٹھیک ہو سکتی ہوگی یا نہیں ہو سکتی ہوگی.
آپ نے ٹھیک کہا, لیکن بچے کا مسئلہ کچھ اور ہے.
تو پھر کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیے, جو ہوا ہے اس سے مریض کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں نے بہت سے بڑے ہاسپٹلز اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے. آپ کے بچے کے اسپائنل کارڈ میں ایسی پرابلم ہوئی ہے کہ میڈیکل کی دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے. 6 مہینے پہلے ایک اسپینش بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, لیکن اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جا سکا.
تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے, دنیا میں بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اپنے مریض کو کچھ پیسوں کے خاطر بلا وجہ کی تسکین دلایا کرتے ہیں, اور ان کے پیسے لینے کے بعد کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے.
ڈاکٹر صاحب, اس بچے کی ماں بہت امید لیے بیٹھی.
صحیح امید اور فالتو کی امید میں بہت فرق ہے.
اس کی ماں یہ میرے والد سے کچھ مت کہیے گا. ممکن ہے کوئی راستہ نکل ہی ہے.
ضرور نکلے گا, لیکن اس مشین اور وہ دواؤں کے دھوکے میں مت آئیے گا. اکثر اوقات ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے ضرور ترقی کی ہے, لیکن کبھی کبھی ایک معمولی سا بخار بھی ہاسپٹل کے کیریئر کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. یہ تو خیر اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہے.
چھ چھ